मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मित्रों आज 22 मार्च 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज के लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत मैं एक कविता से करना चाह रहा हूं और इनफैक्ट आप इस कविता को अकविता भी कह सकते हैं। अकविता इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब हम कविता की बात दिमाग में लाते हैं तो हमें लगता है कि उसमें एक लय होगी, एक रिदम होगा, छंदबद्धता होगी, लेकिन आपको मालूम है कि जो मॉडर्न पोएट्री लिखी जाती है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो यदि आप चाहें तो आप अकविता कह सकते हैं, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। हाँ, अब ये आपको कितनी पसंद आएगी कितनी नापसंद आएगी मित्रों यह सब आपके अपने अपने ऊपर है, लेकिन मुझे ये कविता बेहद पसंद है और इसीलिए मैं आपको इस आज सुनाने भी जा रहा हूं और इसके माध्यम से मैं लाइफ मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें आपसे करूंगा। मित्रों ये जो कविता लिखी है ये कविता लिखी है हमारे जर्मनी के कवि हैं पास्टर निमोत्तर उनकी लिखी हुई कविता है। अब आप देखिए कि ये कविता क्या है, गद्यनुमा है और बहुत ही सरल है, आपको दिमाग को लगाना नहीं पड़ेगा, बस सामान्य तरीके से सुन लीजिए और यदि आप चाहें तो आप इसे गद्य भी मान लीजिए कि ये प्रोज में लिखी हुई है, पोएट्री नहीं है, ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों कविता देखिए क्या है, बड़ी प्यारी कविता है और बड़ी गहरी कविता है और किस तरीके से बिल्कुल सरल अंदाज में और कितनी जोरदार बात कह दी गई है। दोस्तों कविता ये इस तरीके से है, पहले वे यहूदियों के लिए आए। देखिए यहां जो वे है आप इसको समझ लीजिए, है ना, आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जर्मनी में जो हिटलर पैदा हुए, जो हिटलर जो लोगों का नेतृत्व कर रहे थे वहां के सर्वे सर्वा थे, वो यहूदियों के दुश्मन थे, वो यहूदियों के मतलब नरसंहार में लगे हुए थे, आप इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो वे कह रहे हैं वे से मतलब एक ऐसी शक्ति से है जो दूसरों की हत्या करते हैं, दूसरों को मारते हैं, है ना, यहां उसका वो शक्ति कौन सी है, फासीवाद, नाजीवाद, है ना, डिक्टेटर तानाशाही, राइट। तो यहां वे की बात की कही जा रही है, पहले वे यहूदियों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था, फिर वे ईसाइयों के लिए आए और तब भी मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ईसाई नहीं था, फिर वे ट्रेड यूनियनों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था, फिर वे मेरे लिए आए और अब मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। दोस्तों ये कविता छोटी सी कविता है लेकिन आप देखिए कि जैसे जब शुरू में तो लगता है कि ये क्या रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसका अंत किया गया है वो हमें अंदर से हिला कर रख देता है, जबरदस्त रूप से हमें अंदर से मित्रों हिला देता है। अब आप देखिए कि वो हिलाता कैसे है दोस्तों, वो क्या चीज है जो हमें अंदर से हिला देती है। यहां जो हिलाने की जो स्थिति है फ्रेंड्स वो कुछ इस तरीके से है कि सामान्यतया जब दूसरों के साथ कुछ अन्याय होता रहता है तो हम कुछ नहीं बोलते, हम चुप रहते हैं। चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है तो दूसरे के साथ हो रहा है, हम तो सुरक्षित हैं, और हमें ऐसा भी लगता है कि हम क्यों दूसरे के मामले में अपना पैर उलझाएं, बेकार के हम अपने क्यों परेशानी मोल लें और हम शांत बने रहते हैं। शांत बने रहना तो मैंने एक अच्छा शब्द बोल दिया, बल्कि यूं कह लीजिए कि हम एक तरीके से बड़े सौम्य से बने रहते हैं, बड़ा उपेक्षा का वातावरण उसके प्रति बनाए रखते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हम भले व्यक्ति हैं, राइट, हमारा ये एटीट्यूड होता है। हम उस समय मित्रों ये भूल जाते हैं कि अब हमारा यह एटीट्यूड हो सकता है कि बूमरेंग बनकर हमारे ही तरफ आ जाए, कि ठीक है कि अभी मैं कोई आप यूं कह लीजिए मुसीबत मोल नहीं ले रहा हूं, ये एक मुसीबत ही है। और आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाओं के समाचार अखबारों में मिलने लगे हैं, यहां तक कि आपको न्यूज में इस तरह की घटनाओं की खबरें मिलने लगी चैनल्स पर कि साहब उसको सरेआम बेइज्जत किया गया लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा जबकि इतने सारे लोग वहां इकट्ठे थे, उसको मारा गया, उसको पीटा गया लेकिन लोग वहां थे भी, कुछ नहीं उन्होंने किया, बल्कि वो फोटो लेने लगे, मतलब अमानवीयता या असंवेदना की यह स्थिति आ चुकी है। और उसी असंवेदना की स्थिति को यहां ये कवि महोदय बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ठीक है अभी आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि आपका उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा है, तो आप चुप रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा, कभी मत भूलिए, कि जब यही आपके साथ होगा, तो जब मैं किसी के साथ हो रहा है उस समय चुप हूं, शांत बना हुआ हूं, उसकी अनदेखी कर रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि जब मेरे साथ होगा तो दूसरे लोग भी वही करेंगे, दूसरे लोग मुझे बचाने के लिए नहीं आएंगे, तो क्या स्थिति होगी। तो मित्रों सवाल यह है कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं। देखिए जो सामूहिक प्रतिरोध है, सामूहिक प्रतिरोध में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और यहां जो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोला, तो यहां आपको अर्थ को समझने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, और वो ये कि यहां मैं का मतलब एक व्यक्ति से नहीं है, मैं का मतलब यहां समाज से है। कि जब किसी एक व्यक्ति के प्रति अन्याय होता है, किसी एक व्यक्ति के प्रति अत्याचार होता है, तो समाज उस समय चुप रहता है। और चुप रहने का मतलब आप ये मत समझिए कि आप तटस्थ हैं, चुप रहने का मतलब तटस्थता नहीं होता, चुप रहने का मतलब होता है कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में शामिल रहना। किस व्यवस्था में? जो वहां उस समय हो रही है, यानी कि जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो गलत हो रहा है, हम कहीं ना कहीं उसे अपनी मौन स्वीकृति दे रहे हैं। तो अगर ये एटीट्यूड हो जाए नागरिकों का, व्यक्तियों का, तो डेफिनेटली जो समाज की जो ताकत है मित्रों, वो कमजोर पड़ जाएगी, वो छीज जाएगी। और देखिए हम समाज में क्यों बने हुए हैं, या यूं कह लीजिए कि समाज में हम क्यों बने रहना चाहते हैं, उसका एक बिल्कुल सिंपल सा कारण है। सिंपल सा कारण यह है क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं, जब हम समूह में रहते हैं, तो हमें एक तरीके से सुरक्षा का आश्वासन मिलता है, हम आश्वस्त रहते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे। और आप अगर समाजशास्त्र उठा करके देखें तो जो समाज का निर्माण हुआ और समाज के बाद जो राज्य का निर्माण हुआ, वो इसीलिए हुआ था, अपनी सुरक्षा के लिए। राज्य हमारी सुरक्षा करता है, समाज हमारी सुरक्षा करता है, और उस सुरक्षा के बदले में हम राज्य को उसका मेहनताना देते हैं, कह लीजिए समाज को उसकी कीमत देते हैं, और वो टैक्स के फार्म में होता है या सेवा के फार्म में होता है या जिस रूप में भी हो, हम उसका भुगतान करते हैं। तो जो समाज का जो मूलभूत उद्देश्य है वो अपने सदस्यों को सुरक्षित करना ही है। अब सवाल यह है कि ये समाज है क्या? क्या समाज कोई अलग से आइडेंटिटी है, उसका कोई अलग साकार रूप है जिसे आप जाकर के जगाएं और कहें कि भैया देखो वो मुझे मारने के लिए आए हैं, तुम उठो और जागो और कुछ करो? ऐसा संभव नहीं है। समाज बेसिकली क्या है? इकाइयों से बना हुआ है, हम और आप ही समाज हैं, या कह लीजिए कि हम समाज के हिस्से हैं। तो मित्रों यहां खासकर जो इस कविता में जो संदेश है, जो महत्वपूर्ण बात है मित्रों, वह यह है कि अगर हम उपेक्षा का भाव रखेंगे, हम जड़ता का भाव रखेंगे, हम अपने को गतिशील नहीं बनाएंगे, गलत चीजों के प्रति आवाज नहीं उठाएंगे, तो ये मान करके चलिए कि जब हमारे साथ ऐसा कुछ होगा तो दूसरे भी हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, और तब सच पूछिए तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा, मैं तब क्या शिकायत करूंगा कि तुमने बोला क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं खड़े हुए, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ही मैं यह बात कहूंगा वो मुझसे प्रश्न पूछ लेगा, वो मुझसे प्रश्न पूछेगा कि उस समय आप क्या कर रहे थे, आप भी तो चुप थे। दोस्तों यहां मैं आपको एक छोटी सी एक बात सुनाना चाहूंगी। एक नाटक है, माई सन्स करके नाटक है, मतलब मेरे पुत्र या कुछ ऐसा करके एक अमेरिकन नाटक है, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूं, मिलर का लिखा हुआ है शायद, मिलर जो हमारे एक नायिका रही हैं, उनके हस्बैंड रहे हैं। मित्रों जो मिलर साहब ने इसमें जो वर्णन किया है वो ये होता है कि एक पिता है जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जिसने भाग लिया था, तो अपने बेटों को वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में सुनाता है, कहानियां सुनाता है, और ये कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में देखो वहां इतना भ्रष्टाचार था, फलाना था, फलाना था, फलाना था, फलाना था, ये खूब बातें करते हैं। आखिरी में वो लड़का सवाल करता है कि ठीक है चलिए ये सब कुछ जो इतना हो रहा था उस समय आप क्या कर रहे थे? बस इस सवाल के साथ वो नाटक खत्म हो जाता है, कुछ इसी तरह का है। मतलब हम क्या कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स यहां कि हम दूसरों के कहे किए हुए पर तो लगातार उंगली उठाते रहते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सच में कुछ अपना पॉजिटिव रोल निभा रहे हैं? हमारा कोई सकारात्मक योगदान उसमें है? और यदि सकारात्मक योगदान है तो मुझे लगता है कि हम वास्तव में कहने के भी अधिकारी हैं। तो दोस्तों ये कविता मुझे अच्छी लगी थी, मैंने सोचा कि मैं इसको आप सब तक पहुंचाऊं। और जब भी हमारे सामने अगर ऐसी संभावनाएं लग रही हैं कि हमें प्रतिरोध करना चाहिए और उस प्रतिरोध के परिणाम आएंगे तो हमें प्रतिरोध करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो गलत काम है वो तभी एक तरीके से जो कर रहा है उस करने वाले को रोक सकते हैं, अदरवाइज फिर वो लगातार करता ही चला जाता है। तो मित्रों ये छोटी सी बात मुझे आप तक इस कविता के माध्यम से पहुंचानी थी। तो फ्रेंड्स अब इजाजत चाहूंगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।